आस्तिक मुस्कुरा रहा था। वो अपनी कल्पनाओं में अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। बेबी, पापा घोड़ा बन रहे हैं और आप पापा की पीठ पर सवारी करना, ठीक है? आस्तिक पागलखाने के अपने सेल में घुटनों के बल पंजों पर चल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ पर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपने बच्चों को इमेजिन करता हुआ उनके साथ खेल रहा था। आस्तिक हंसते हुए हवा को छूता है और कहता है, रो मत, अगली बार तुम भैया की जगह मेरी पीठ पर बैठ जाना। अपने दोनों बच्चों को बारी बारी अपनी पीठ पर बैठाऊंगा। और उसके बाद आस्तिक दीवार की तरफ देखते हुए कहता है, अरुणिमा, तुम इन्हें खाना क्यों नहीं खिला रही हो? देखो ये कब से रो रहे हैं। दीवार पर उसने एक लड़की की आड़ी टेढ़ी तस्वीर बनाई हुई थी और उसे ही वो अरुणिमा कह रहा था। आस्तिक को ऐसा लग रहा था उसका परिवार उसके पास है। दीवार पर अरुणिमा के साथ दो छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर बनाकर वो अपने परिवार के साथ बैठता हुआ उनके साथ बातें करता है और खेलता है। आस्तिक को नहीं पता है कि उसके बच्चे कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, तो कभी वो उस खिलौने वाले गुड्डे को अपने गोद में लेकर बच्चों को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बहलाता है, तो कभी उसे लगता है कि उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो उस तरीके से ही अपने बच्चों से बात करता है। कभी वो बैठकर बच्चों को ABCD सिखाता है तो कभी अपने बच्चों की दूध की बॉटल के लेकर उनके पीछे पीछे भागने लगता है। इस 10x10 के कमरे में आस्तिक ने अपना पूरा संसार बसा लिया था। उसे लग रहा था कि इस चार दीवारी के अंदर वो अपने बच्चों के साथ हर एक दिन को जी रहा है। आस्तिक अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, वो दीवार पर लगी अरुणिमा की तस्वीर के साथ बातें कर रहा था। इस बात से अनजान की दरवाजे की खिड़की से डॉक्टर और ताईजी आस्तिक को इस हालत में देख रहे हैं। आस्तिक की ऐसी हालत देखकर ताईजी के आंसू निकल आए थे। वो अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी और मुंह पर हाथ रखकर वो जोर जोर से रोने लगती हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही आस्तिक है जो एक वक्त पर पूरी रियासत पर राज करता था और जिसका नाम सुनकर ही लोग डर से कांप जाया करते थे। ताईजी ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए कोई तो उपाय होगा। डॉक्टर कुछ तो बताइए, मैं मेरे बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, पर मैंने उसे बचपन से पाला है। मेरे लिए मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। कुछ तो बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखिए मैडम, मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है कि उनकी बीमारी का एक ही इलाज है, वो है इनका परिवार। ये अपनी बीवी और बच्चों को बिलाते रहते हैं और हाल फिलहाल मुझे पता चला है कि इनके दो बच्चे भी हुए हैं। क्या ये बात सच है? ताईजी ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। क्योंकि अरुणिमा ने दो बच्चों को जन्म दिया है ये बात ताईजी को पता थी। हालांकि उन्हें पहले से ही पता था कि अरुणिमा ने दो बेटों को जन्म दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अरुणिमा से मिलने नहीं गई थी। वो आस्तिक को लेकर बहुत चिंतित थी। माना कि पृथ्वी और कीर्ति जाकर अरुणिमा से मिलकर आए थी और उन्होंने बच्चों के बारे में ताईजी को बताया भी था, लेकिन फिर भी ताईजी के मन में आस्तिक की फिक्र ज्यादा थी। ताईजी का जवाब सुनकर डॉक्टर साहब कहते हैं, तो फिर आप सोच क्या रही हैं? इनकी पत्नी को कहिए कि बच्चों को लेकर इनसे मिलने आए। उनकी मौजूदगी से इन्हें थोड़ा आराम मिलेगा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम इनका इलाज करेंगे। ताईजी ने कसके अपनी आंखें बंद की और अफसोस के साथ कहा, काश मैं ऐसा कर सकती डॉक्टर साहब। वहीं दूसरी तरफ शारदा देवी की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया गया था। अरुणिमा अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए अभी भी आंसू बहा रही थी। मिश्री कमरे के किनारे पर खड़े होकर अपनी माँ के शरीर को ले जाता हुआ देख रही थी और उसके आंसू बह रहे थे। मिश्री जब स्कूल से आई तो उसके घर के बाहर पहले से ही पुलिस की टीम मौजूद थी और जो उसने अंदर जाकर देखा वो देखने के बाद तो मिश्री के होश ही उड़ गए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ मर चुकी है और उसकी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अरुणिमा ही है। सक्षम ने मिश्री को संभाला और उसे सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनने के बाद मिश्री के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पृथ्वी और सक्षम कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे, उनकी पहुंच ऊपर तक थी। मौके की नजाकत को समझते हुए सक्षम ने अरुणिमा की सेफ्टी के लिए कोर्ट से मंजूरी ले ली है। सक्षम के वकील स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि अरुणिमा ने सेल्फ डिफेंस में खुद की और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शारदा देवी का खून किया है। अरुणिमा ने अभी एक हफ्ते पहले ही अपने बच्चों को जन्म दिया है, जिस वजह से ना तो उसे हिरासत में लिया जाएगा और ना ही उस पर कोई केस बनता है, लेकिन अरुणिमा को फिर भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। मौका वारदात से सारे सबूत इकट्ठे कर दिए गए थे और जो भी सबूत मिले थे वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अरुणिमा ने खुद की और बच्चों की जान बचाने के लिए ही शारदा देवी का खून किया है। मिश्री रोते हुए अरुणिमा के पास आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। मिश्री रोते हुए अरुणिमा को देखकर कहती है, दीदी ये क्या हो गया है? अरुणिमा के आंचल में आकाश और अनंत दोनों दूध पी रहे थे और अरुणिमा उन दोनों को अपनी गोद में लेकर शून्य भाव से सामने की तरफ देखते हुए मिश्री से कहती है, मेरे पति से बदला लेने के लिए माँ ने मेरा इस्तेमाल किया है। उन्होंने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की और उनका कहना है कि वो मुझे बेचने वाली थी सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मेरी परवरिश बस मेरे रूप के लिए की थी ताकि एक दिन वो मुझसे अच्छी कीमत वसूल कर पाएंगे। मेरे पति ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, जिसकी वजह मेरी माँ है। उनके लिए मैं सिर्फ एक सामान थी और वो अपने परिवार की बर्बादी का बदला मुझसे ले रहे थे। उसके बाद अरुणिमा खुद के ऊपर हंसते हुए ही कहती है, क्या जिंदगी है मेरी। सच में मैं सिर्फ राजा साहब के हाथों की बनी हुई कठपुतली नहीं थी, मैं तो सबके हाथों की कठपुतली हूँ। सब मुझे अपने इस्तेमाल और फायदे के लिए नचा रहे हैं। मुझे उस दुश्मनी में धकेला गया है जो मेरे जीवन का हिस्सा भी नहीं थी। अरुणिमा की बात सुनकर मिश्री के आंसू और तेज हो गए। उसे अपनी माँ के बारे में सच्चाई जानकर बहुत दुख हुआ था।